أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ان شاء اللہ خداوند متعال تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. کورونا وائرس سے خطرناک تر جو پینڈیمک ہے یا ایپیڈیمک ہے وہ ہے گناہ. چونکہ ہم زیادہ تر بدنی اور جسمانی احکام سے واقف ہیں، اور جو دنیا ہے ہمارے سامنے وہ مادی دنیا ہے بالآخر، تو زیادہ تر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ مادی ہیں، جسمانی ہیں. لہٰذا اس چیز کے نتیجے میں ہم اسی جہان کے معنوی اور روحانی پہلو سے غافل ہو جاتے ہیں. چونکہ نظام ہستی اور دنیا کا نظام اور اس پورے عالم کا نظام خدا نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے اندر صرف نظام بدن نہیں ہے، بدنی نظام فقط حاکم نہیں ہے بلکہ روحی نظام حاکم ہے. دونوں نظام یہاں پر حاکم ہیں، بدنی نظام بھی حاکم ہے اور روحی نظام بھی حاکم ہے، اور یہ دونوں سسٹمز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تأثیر اور تأثر کا عمل انجام دیتے ہیں. یعنی بدن کا نظام روحی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے، روحی نظام بدنی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کا ایک پہلو گناہ ہے، گناہ اس کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ اگر ہم گناہ کی اگر تأثیر روایات اہل البیت علیہ السلام میں پڑھنا شروع کریں، اس کو ہم مطالعہ کرنا شروع کریں، تو انسان واقعاً حیران ہو جاتا ہے کہ گناہ کے کیا اثرات ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے گناہ کے اثرات اہل البیت علیہ السلام کی روایات سے بیان کروں، ایک 5 منٹ کا مقدمہ میں پیش کروں گا کہ اس کے نتیجے میں اس گناہ کے آثار اور جتنی بھی تاثیرات ہیں اس کو سمجھنا آسان ہوگا. وہ مقدمہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پریزنٹیشن میں بھی آ جائے گا سلائڈز پر، وائٹ بورڈ اینیمیشن میں. وہ یہ کہ خدا نے ہمیں انسان کو دنیا میں بنا کر بھیجا ہے. اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ ہم خلیفہ الہی کے مقام تک پہنچ سکیں. اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جس کا آخری مرحلہ موت کہلاتا ہے، موت کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ عالم برزخ میں. بس انسان کو پیدا کیا گیا ہے عالم دنیا میں، پھر عالم دنیا کے بعد عالم برزخ میں بھیجا جاتا ہے انسان کو، کہ جو موت کے بعد ہے، اور عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے، جس کو قرآن کی تعبیر ہے، قرآن نے اس کو معاد کے نام سے جانا ہے، معاد یا قیامت. بس عالم دنیا، عالم برزخ، عالم معاد یا عالم قیامت. البتہ دنیا سے پہلے انسان کہاں تھا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ انسان شناسی کا موضوع ہے کہ دنیا سے پہلے انسان کہاں تھا. انسان اگرچہ دنیا میں پیدا ہوا ہے لیکن اس کی پیدائش حقیقتاً دنیا سے پہلے ہوئی ہے. انشاءاللہ ماہ رمضان میں آپ منتظر رہیں اس موضوع کے لیے کہ تاریخ انسان کیا ہے. بس عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت. اب اصل بات یہ ہے، سیکرٹ یہ ہے کہ یہ تینوں عوالم، عالم کی جمع کیا ہے؟ عوالم. یہ تینوں عوالم ون یعنی ایک ٹائم میں، ریئل ٹائم میں ایک ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ऐसा नहीं है कि हम अगर इस वक्त आलम दुनिया में हैं तो हम आलम बरजख से जुदा हैं, ऐसा नहीं है। हम दुनिया में रहते हुए ना आलम बरजख से जुदा हैं ना आलम कयामत से। मसलन अगर मैं एक अमल अंजाम देता हूँ, अगर मसलन ये किताब मेरे पास है, ठीक है, ये किताब मेरे पास है, आप इसको गौर से देखें, अगर ये किताब मैं यहाँ से यहाँ रखता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने रख दी, क्या ये अमल था मेरा? नहीं था, ये अमल था मेरा, यहां से यहां तक मैंने किताब रख दी, ये एक अमल कहलाता है। अमल सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, रोजा रखना नहीं है, बल्कि छोटी सी छोटी हरकत भी अगर मैं अंजाम दूं, इंसान अंजाम दे, ये अमल कहलाता है। अब वो अमल चाहे बदन से अंजाम पाए, चाहे जहन के अंदर रूह के अंदर अंजाम पाए, अमल अमल है। ओके, अमल अमल है। अब ये किताब जो अब मैं वहां वापस आप देखें, यहां से मैं यहां ला रहा हूं, यहां मेरे पास आ गई। अब दीन ये कहता है, इस्लाम की तालीमात में हम ये इस्तेफादा करते हैं अहादीस और कुरान की रूह से, कि ये मेरा छोटा सा अमल ना सिर्फ दुनिया और इस जिस्मानी दुनिया की कैलकुलेशंस को दरहम बरहम करता है, बल्कि यही मेरा छोटा सा अमल इस पूरे निजाम हस्ती को, यानी इस पूरे रूही निजाम को दरहम बरहम करता है, इसकी कैलकुलेशंस मुकम्मल बदल जाती हैं इस एक अमल से, ठीक है। अब यही मेरा एक अमल आलम बरजख में भी इसी वक्त असर अंदाज हो रहा है, अगरचे मैंने यही अमल यहां से मैं यहां पर किताब लेकर आया, ठीक है, अब यही मेरा अमल इसी वक्त इसी वक्त इसी वक्त आलम बरजख में भी असर अंदाज हो रहा है और आलम कयामत में भी इसकी तासीर हो रही है। यानी मैं एक ही वक्त में अपनी दुनिया को भी आबाद कर रहा हूं इस एक अमल से, इस किताब की जा बजाई से, ठीक है, और हम जमान एक ही वक्त में अपने आलम बरजख को भी आबाद कर रहा हूं और आलम आखिरत को भी आबाद कर रहा हूं। यानी रिजल्ट्स इस एक अमल का जो रिजल्ट है, नतीजा है, वो मुझे दुनिया में भी देखने को मिलेगा, बरजख में भी और कयामत में भी। अब अमल या कुरान ने कहा है, अमल या हसना है या सय्यआ है। हसना यानी अच्छा अमल, सय्यआ यानी बुरा अमल। अमल सालेह, अमल गैर सालेह, अमल हसना, अमल गैर अमल सय्यआ, दोनों के आसार हैं दुनिया में भी, बरजख में भी, कयामत में भी। अब एक अमल ऐसा है जिसे जब इंसान अंजाम देता है तो एक ही टाइम पर तीनों अवालिम में इसका असर देखने को मिलता है। हमें इस वक्त हमें हमारे आमाल के जो नतीजे हैं, इफेक्ट्स हैं, आसार हैं, बरजख में हमें नजर इस वक्त नहीं आ रहे। जब वहां जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया है, क्या हमने आबाद किया है, और कयामत तो बिलाखिर कयामत है। एक अमल जिसको दीन ने शदीद मजम्मत की है वो है गुनाह। गुनाह, अब गुनाह मुख्तलिफ किस्म के हैं। मसलन मैंने यहां पर जो फहरिस्त लिखी है गुनाह की, मसलन गुनाह बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। इसके इसके हवाले से किताबें बहुत लिखी गई हैं। गुनाहाने कबीरा एक किताब है जो कि आयतुल्ला दस्तगैब शिराजी रहमतुल्ला अली की किताब है। इसी तरह हुज्जतुल इस्लाम मोहसिन कराती की किताब है जो कि है गुनाह शनासी, शायद इसकी इस किताब का उर्दू तर्जुमा हो चुका है, हतमन आप पैगीरी करें, देखें गुनाह क्या है। बहुत मतलब झूठ गुनाह है, जिना करना गुनाह है, तोहमत लगाना गुनाह है, बोहतान लगाना गुनाह है। इसी तरह एक शख्स अगर किसी शख्स दूसरे शख्स के ऊपर रहम नहीं करता, गुनाह है। जो झूठी कसम खाता है ये गुनाह है। जो एक मोमिन को जबानी तौर पर अजियत करता है ये गुनाह है। बहुत सारे गुनाह है। इसी तरह एक और गुनाह है रिश्तेदारों से रवाबित ना करना, ना रखना, ये भी एक गुनाह है। यानी कत ए रहम, सिले रहम का ना होना ये गुनाह है, बहुत सारे गुनाह हैं। और कई रिवायात हैं, हजार रिवायात से ज्यादा खुद सिले रहम के हवाले से शायद 257 रिवायात या मौजूआत अहादीस के अंदर वारद हुई हैं। इसी तरह दीगर गुनाहों के बारे में 100 से ज्यादा, मसलन झूठ के बारे में बहुत ज्यादा रिवायतें आई हैं, झूठ की मजम्मत पर और झूठ के आसार पर। अब कुल्ली तौर पर ठीक है, ये मैंने मुकदमा आपके सामने पेश कर दिया। एक और बात मैं आपको कह दूं, वो ये कि इंसान जो भी अमल अंजाम देता है, गुनाह का अगर किसी ने गुनाह अंजाम दिया है, खुदा की रहमत का तकाजा आप देखेंगे यहां पर क्या है। खुदा की रहमत का तकाजा यह है कि एक इंसान जब गुनाह अंजाम देता है तो 7 घंटों तक वो अमल उसके नामाए आमाल में नहीं लिखा जाता, 7 घंटों तक। अगर 7 घंटों तक उसने तौबा कर ली फबेहा, अगर नहीं की तो वो अमल, वो गुनाह का अमल उसके नामाए आमाल में लिखा जाएगा। तो ये खुदा की रहमत का तकाजा है, क्योंकि कायदा भी है कि रहमत खुदा उसके गजब पर गालिब है। ठीक है, बस यहां पर हमें यह देखना है कि अमल क्या है और सबसे बल्कि अहम टॉपिक गुनाह का अमल क्या है। अब यहां पर मैंने आपके सामने कुछ अहादीस जमा की हैं, बहुत ज्यादा अहादीस में से शायद 13 से 15 अहादीस हैं, कि अगर वक्त बचा तो सारी अहादीस को हम कराअत करेंगे, वरना जितना टाइम हुआ उतना ही। गुनाह का असर एक ये है जो इमाम रजा अलैहिस्सलाम की हदीस में आया है कि इन्नल हिजाब अलल खल्की लिकसरति ज़ुनूबिहिम। ठीक है, लोगों के कुलूब या लोगों के ऊपर जो, लोगों के अंदर जो हिजाब पैदा होते हैं, हिजाब कल्ब, मुराद यहाँ पर इंसान के कल्ब के ऊपर जो हिजाब तारी होते हैं, लग जाते हैं, वो उनके कसरत गुनाह की वजह से है। इंसान अगर एक गुनाह अंजाम दे, उसके नतीजे में उसके कल्ब पर, उसके दिल पर एक हिजाब तारी हो जाता है, लग जाता है, जिसको रिवायात में और तालीमात इस्लाम में कहा गया हिजाब गफलत। एक गुनाह से एक गफलत में इजाफा, ठीक है, एक तौबा से उस गफलत के हिजाब को खत्म करना, बस ये एक असर। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इहज़रु ज़ुनूबा फ़इन्नल अब्दा लयुज़निबु फ़युहबसु अन्हु रिज़्क। गुनाह से बचो, गुनाह से बचो, कि अगर एक इंसान, अगर एक बंदा गुनाह को अंजाम देता है तो रिस्क का दरवाजा उसके लिए बंद हो जाता है। एक और असर गुनाह का, नमाज शब से महरूमियत है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना रजुला लयुज़निबुज़्ज़म्बा फयुहरमु सलातल्लैल। वो नमाज शब से महरूम हो जाता है। आप देखें गुनाह के असरात। अब एक दुआ है माह रमजान की, कि जिसके अंदर एक इंसान मुख्तलिफ गुनाहों से खुदा की पनाह लेता है, खुदा या मसलन ये ताबीरात हैं आप देखें। और इस दुआ से हमें पता चलता है कि गुनाह के मुख्तलिफ असरात क्या है। मसलन देखें, इलाही इग़फ़िरली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम। दुआए कुमैन में भी ये जुमलात है और माह रमजान की भी एक दुआ में ये जुमलात आए, खुदाया उस नेम, उस गुनाह से मैं पनाह मांगता हूं जो नेमत को मेरे ऊपर बंद कर दे। ये एक असर, यानी एक गुनाह का एक असर ये कि नेमतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, नेमतों का नुजूल बंद हो जाता है। दो, वग़फ़िर लिय ज़ुनूबा अल्लती तुनज़िलुन निक़म। खुदाया मैं उस गुनाह से मगफिरत चाहता हूं जो कि अल्लती तुनज़िलुन निक़म मेरे ऊपर अजाब नाजिल करे। बस एक गुनाह, गुनाह का दूसरा असर आप देखें क्या है, کہ جو عذاب نازل کرتا ہے. 16 وَغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ وَغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَقْطَعُ الرَّجَا. خدایا میں ایسے گناہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں, مغفرت چاہتا ہوں کہ جو امید کو میرے اندر, جو امید ہے تیری نسبت, وہ ختم کر دے. بس تیسرا اثر کیا ہو گیا؟ وہ گناہ کہ جس کے نتیجے میں امید ختم ہو جاتی ہے. خدا ہمارے دلوں سے امید ختم کرتا ہے اور ہمارے اندر نا امیدی ایجاد کرتا ہے. پانچ وَغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَاء. خدایا میں ان گناہوں سے تیری مغفرت چاہتا ہوں جو دعاؤں کی قبولی میں رکاوٹ بنتے ہیں. وَغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنزِلُ الْبَلَاءَ. ایسے گناہ ہیں جس کے نتیجے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں. وَغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَكْشِفُ الْغِطَاءَ. ایسا گناہ کہ جس کا اثر یہ ہے کہ پردوں کو ہٹا دے. ہم کتنے انسان, کتنا گناہ, ایک مسلمان کس قدر گناہ انجام دیتا ہے, لیکن خدا اتنا حلیم ہے, ستار العیوب ہے, کہ بالآخر اگر جس دن وہ اپنے اس اسم ستار العیوب کو اگر استعمال نہ کرے تو انسان اسی دنیا میں رسوا ہو جائے. ایک گناہ انسان کو رسوا کرنے کے لیے کافی ہے اگر خدا ستار العیوب نہ ہو. وَغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ. گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ فنا اور موت کو تعجیل کرتی ہے. وَغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُورِثُ الندم. گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ پشیمانی لے کر آتی ہے, رسوائی لے کر آتی ہے. وَغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْتِكُ الْإِسَمْ. عصمت کا پردہ ختم کر دیتی ہے. بالآخر انسان عصمت کے اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا جس لیول پر معصومین علیہ السلام ہیں, لیکن عصمت کے چھوٹے لیولز پر انسان پہنچ سکتا ہے, چھوٹے لیولز پر. اب ایک روایت بہت ہی خوبصورت, امام صادق علیہ السلام نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. بینما موسیٰ علیہ السلام جالسن, ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. اذ اقبل علیہ ابلیس, کہ ابلیس ان کے نزدیک آیا, ان کے پاس آیا. وعلیہ برنسن, اس حال میں کہ ابلیس نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, ایسی ٹوپی جو کہ ذو الوانن, مختلف رنگوں اور کلرز کی ٹوپی تھی. فلما دنا من موسیٰ خلع البرنس وقام الی موسیٰ فسلم علیہ. تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, ان کے نزدیک آیا, ان کے سامنے آیا, تو موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا. فقال له موسیٰ, موسیٰ نے ابلیس سے کہا کہ من انت؟ فقال انا ابلیس. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ابلیس نے کہا کہ انا ابلیس, میں ابلیس ہوں. قال انت فلا قرب اللہ دارک, تم وہی ہو جس کو خدا نے اپنی بارگاہ سے جو ہے وہ باہر نکال پھینکا. قال انی انما جئت لأسلم علیک لمکانک من اللہ, میں اس وجہ سے آیا ہوں آپ کے پاس, ابلیس کہہ رہا ہے, تاکہ میں آپ کو سلام کروں اس مقام کی وجہ سے جو آپ کا مقام خدا کے نزدیک ہے. فقال له موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, فما هذا البرنس, یہ ٹوپی کیا ہے؟ قال به اختطف قلوب بني آدم, میں اس ٹوپی کے ذریعے, ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں اس ٹوپی کے ذریعے بنی آدم کے دلوں کو, اختطف یعنی अगवा करना, किडनैप करना। मैं इस टोपी के जरिए बनी आदम के दिलों को अगवा करता हूँ। अब तफसीर में आया है कि इस टोपी के ऊपर जो मुख्तलिफ रंग मौजूद हैं, ये इस मुख्तलिफ गुनाहों की अलामत हैं। मसलन शहवत की अलामत है, और इसी तरह दुनिया की जो रंगीनियां हैं, जीनतें हैं, उसकी अलामत है, और इस तरह की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए इबलीस बनी आदम को अगवा करता है। फ़क़ाल मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने इबलीस से कहा कि फ़अख़बिरनी, मुझे खबर दो, मुझे बताओ, बिज़म्बी, एक ऐसे गुनाह के बारे में, अल्लज़ी इज़ा अज़नबहु बनू आदम, कि अगर बनी आदम उस गुनाह को अंजाम दे, इस्तहवज़्ता अलैह, कि अगर वो गुनाह अंजाम दे बनी आदम उस गुनाह को, तो तुम उसके ऊपर मुसल्लत हो जाते हो उस गुनाह के नतीजे में। यहां पर इबलीस ने तीन गुनाह अंजाम बताए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि अगर ये तीन चीजें बनी आदम अंजाम दे तो मैं उन पर मुसल्लत हो जाऊंगा, उनके वजूद पर मुसल्लत हो जाऊंगा। एक कौल इबलीस ने कहा, इज़ा अअजबत हु नफ्सहू, जब इंसान अपने आप को पसंद करने लगे अपनी मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, मेरी सोच अच्छी है, मेरे कपड़े अच्छे हैं, मेरा घर अच्छा है, मेरा सब कुछ अच्छा है, इज़ा अअजबत हु नफ्सहू, कि इंसान अपने आप को पसंद करने लगे। दो, वस्तकसरा अमलहू, जब इंसान अपने अमल को ज्यादा हिसाब करने लगे कि मैं तो बहुत सारे आमाल अंजाम देता हूं, खास तौर पर अच्छे आमाल। जब इंसान बाज़ूकात होता है कि इंसान जब एक नेक अमल अंजाम दे, अच्छा अमल अंजाम दे, तो ये समझता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने तीर मारा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हदीस में है कि अगर इंसान अच्छा अमल अंजाम दे, अमल सालेह अंजाम दे, तो उसको फौरन भुला दे उसको, ठीक है। ये दो। तीन, वसगुरा फी आईनी ज़म्बुहू, और ये खतरनाक है, वसगुरा फी आईनी ज़म्बुहू। और तीसरी चीज जिससे इबलीस मुसल्लत हो जाता है इंसान के ऊपर उस वक्त, कि जब इंसान जब गुनाह अंजाम देता है तो उस गुनाह को छोटा समझता है कि ये तो मैंने कोई बड़ा गुनाह अंजाम नहीं दिया है, एक गाना ही तो सुना है, एक मसलन कोई फला मूवी ही तो देखी है मैंने। मूवी देखना बुरी बात नहीं है, फिल्में देखना बुरी बात नहीं है, बुरी फिल्में देखना बुरी बात है। अगर किसी मकसद के तहत इंसान कोई अच्छी फिल्म देख रहा है, मसलन किसी, बिलाखिर फिल्म देखने की भी मकासद है। आज के ज़माने में मूवीज और फिल्में इंसान की हिदायत में भी काम आ सकती हैं और इंसान को गुमराह भी कर सकती हैं। अब अगर इंसान कोई गुनाह अंजाम दे, कोई गाना सुन ले, कोई टाइम ज़ाया कर ले मसलन, और इसको छोटा समझने लगे, तो इबलीस मुसल्लत हो जाएगा इसके ऊपर। ये यहां तक बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इबलीस की का मुकालमा था आपस में। आगे भी मुकालमा है लेकिन वो हमारे मौजू से मरबूत नहीं है। बस यहां हम देख लेते हैं कि हमने यहां पर देखा कि गुनाह के आसार क्या है, और आखिर में जो हमें एक चीज देखनी है वो ये है कि ये जो किताब मेरे सामने है, ये आयतुल्ला हकशनास रहमतुल्ला अलैह के दर्स अखलाक हैं, उनका मजमूआ है, एक बड़े आरिफ इंसान कामिल जो उस आली मर्तबे इंसानियत व कमालात इंसान तक पहुँचे थे, जो कि चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ था। ये इस किताब का जो फ्रंट कवर है, फ्रंट कवर, इसमें एक बहुत ही बेहतरीन नसीहत मौजूद है कि मैंने सोचा कि ये आपके सामने पढ़ूं और इसका तर्जुमा करूं, कि वाकया हिला देने वाली नसीहत है कि जो हमारे मौजू से ही मजबूत है। पहले इसका मैं फारसी मतन पढ़ूंगा और फिर इसका तर्जुमा। फरमाते हैं, तमाम अफकारी के इंसान दर हाल हयात दौरान दर लहजे मार्ग जलवे में कुनात, तमाम वो अफकार जो इंसान अपनी जिंदगी में रखता है, जो भी सोचता है इंसान, जो भी सोच विचार थॉट्स अफकार अपने हयात में जिंदगी में रखता है, मौत के लम्हे में, मौत लम्हा है, मौत के लम्हे में ये तमाम अफकार उसके सामने तजल्ली करेंगे। फरमाते हैं, शुमा दीदीद के वक्त ख्वाब खुसूसान अगर कदरी हम मिजाज इंसान ज़ईफ बोशान अफकार रूज दर फिक्र इंसान जिल्वे गरीमी कुनात। फरमाते कि आप जानते कि इंसान जब सोने से पहले बिस्तर पे जाता है या सोने के बाद भी जब इंसान ख्वाब देखता है, अगर इंसान का मिजाज कुछ हद तक ज़ईफ हो तो उस दिन के तमाम, दिन भर के तमाम अफकार और थॉट्स उसके सामने तजल्दी करते हैं रात के वक्त। मौत हम शबीब इनास्त, मौत भी इसी के शबी है। व तमाम अफकारी के जदंदे खिलाफ व नारवास दर आन हंगाम तजस्सुम पैदा मी कनम। जितने भी बुरे अफकार हैं, जितने भी अफकार जो इस्लाम के खिलाफ हैं, शरीयत ने जिसको मना किया गया कि इस तरह तुम नहीं सोचो, गुनाह के बारे में नहीं सोचो, गलत ना सोचो, ये जितने भी नारवा अफकार हैं, गलत अफकार हैं, मौत के वक्त इंसान के सामने तजस्सुम करेंगे। हाल कसी के निमी तवानेस्त दर बीदारी इन ख्यालात रा अस खुद दूर कुनाद। अगर कोई शख्स बेदारी के अंदर, बेदारी की हालत में इन बुरे ख्यालात को अपने आप से दूर कर सके, ना कर सके दूर, अल ऑन मी तवानत दर लहजे ये जान दादन व तहत फिशार शदीद मर्ग व वसवास शैतानी अजीम तफक्कुरात रिहा शवद, तो क्या इंसान मौत के लहजे में जबकि शदीद फिशार होता है मौत के वक्त और शैतानी वसवसों वसवास अपने औच पर होते हैं मौत के वक्त, क्या इन तफक्कुरात गलत से निजात पा सकता है मौत के लम्हे, अगर बेदारी में निजात पाना ना पा सके। बहुत तवज्जो बेईन अफकार जान में से, अब इंसान इन्हीं गलत अफकार के साथ साथ इस दुनिया से चला जाता है, अपनी जान दे देता है। इन हम ये किया अस एलले सू ए खातमे आस, और बुरी आकेबत का एक सबब यही है। हम कहते हैं ना खुदाया हमारी आकेबत बखैर फरमाए, लेकिन बाज लोगों की आकेबत बखैर नहीं होती है, उसकी एक वजह यह है। खूब इंशाल्लाह खुदावंद ने मुताल हमें बुरे अफकार से निजात दे, हमें शैतानी वसवसों से निजात दे। माहे शाबान के नतीजे में, माहे शाबान के आमाल को के अंदर जो आमाल रिवायात में वारिद हुए उन्हें अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए, कि जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह इन गुनाहों से हम बचें, निजात पाएं और इंशाअल्लाह आकिबत बखैर हो। अल्लाहुम्मा अजअल अवाकिब उमूरना खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل